हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जब इस पृथ्वी पर असुरी शक्ति का आतंक मचा, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग अवतार लेकर इसकी रक्षा की। वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय चार कुमारों द्वारा श्रापित थे, इसीलिए उन्हें तीन जन्म असुर का लेकर भगवान से युद्ध करना पड़ा। आज की नाटिका में हम उनके सबसे पहले जन्म और अंत को दिखाएंगे। भगवान उनके द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से बारंबार प्रकटित होते हैं। दीति और कश्यप मुनि के दो असुरी पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरणकश्यप। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उसके स्थान से निकालकर उत्पात मचाया और भगवान श्री कृष्ण उस समय शुकर का रूप लेकर, जिन्हें हम वराह अवतार के नाम से जानते हैं, हिरणाक्ष का वध किया। हिरणाक्ष कोई साधारण असुर नहीं था, वो पराक्रमी और शक्तिशाली था। हिरणाक्ष के वध का समाचार उसके भ्राता हिरणकश्यप के पास पहुंचता है और तब
महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मैं आपके लिए कुछ समाचार लाया।
क्या तुम देख नहीं सकते कि इस समय मैं आनंद ले रहा हूँ? ऐसा कौन सा समाचार लाए हो जिसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? थोड़ा और मदिरा लाओ।
परंतु महाराज, ये समाचार कोई साधारण समाचार नहीं है, कृपया करके इसे सुने।
ठीक है, यदि तुम कहते हो तो बताओ ऐसा कौन सा समाचार है जिसे कहने में तुम विलंब नहीं कर सकते।
महाराज, आपके भाई
बताओ मेरे पराक्रमी भाई ने किस देवता को दंडित किया है?
नहीं महाराज, समाचार कुछ और ही है। आपके भाई हिरण्याक्ष युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए।
क्या संभव? हिरणाक्ष, जिसे काल भी घबराता है, उसे मारने की साहस किसने किया है?
विष्णु ने।
विष्णु?
हाँ, विष्णु ने।
परंतु यह सब कैसे हुआ, क्या हुआ?
महाराज, आपके भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसके स्थान से उठाकर फेंक दिया था और विष्णु ने छल से एक सुकर का रूप लेकर पृथ्वी को उसके स्थान पर रख दिया। यह देखकर आपके भाई ने विष्णु को युद्ध के लिए चुनौती दी और विष्णु ने छल से आपके भाई का वध कर दिया।
छल! विष्णु ने छल से मेरे भाई की हत्या की है। ये विष्णु सदैव देवताओं का पक्षपात करता है। परंतु ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हिरण्यकशिपु अब तक जीवित है। मुझे मेरे मृत भाई की सौगंध, विष्णु का रक्त मैं अपने भाई को अर्पण करूंगा। ओ दानव, देवताओं और सभी सेवक, मुझे ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर जाकर विष्णु के लिए किए गए सारे हवनों को ध्वस्त करने वाला हूँ और सारे ब्राह्मण और गायों की हत्या करने वाला हूँ। जहाँ भी धर्म हो उसका मैं सर्वनाश करने वाला हूँ। जहाँ कहीं भी विष्णु की पूजा हो रही है और जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हमें उसे मृत्यु के घाट उतारना है।
मैं अभी सेना को तैयार करता हूँ।
शीघ्र करो, ये कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विष्णु को कोई भोग लगाने वाला ही नहीं होगा तो वो भूखा ही मर जाएगा, और जब विष्णु मर जाएगा तो धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब मैं और शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से घोर तपस्या करूंगा। ऐसा वर प्राप्त करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं।
मंधार पर्वत पर हिरण्यकश्यपु ने तपस्या आरंभ की। अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और हाथ ऊपर करके वह तपस्या करने लगा। कई वर्षों की तपस्या के कारण चींटियों ने हिरण्यकश्यपु के शरीर पर अपना घर बना लिया। चींटी, कीड़े, मकोड़े सभी हिरण्यकश्यपु के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे, परंतु फिर भी हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दी। ऐसी घोर तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र घबरा उठे और वे तुरंत ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक भी हिरण्यकश्यपु के तपस्या से तपने लगा और ब्रह्मा जी को विवश होकर हिरण्यकश्यपु के समक्ष खड़ा होना पड़ा। ब्रह्मा जी अब हिरण्यकश्यपु को आग्रह करते हैं कि वे उससे वरदान मांगे। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगता है, परंतु ब्रह्मा जी ये समझाते हैं कि वे स्वयं भी अमर नहीं हैं। एक समय के उपरांत वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर हिरण्यकश्यपु अपनी असुरी बुद्धि का उपयोग करके वरदान मांगता है।
मेरी मृत्यु ना पशु, मनुष्य और देवता से हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना घर के भीतर हो, ना घर के बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात्रि में, ना धरती पर हो, ना आकाश में। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए।
तथास्तु, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करने के उपरांत हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी लोग उससे भयभीत होने लगे और सारे अस्त्र शस्त्र शूरवीर हिरण्यकश्यपु के सामने हार मानने लगे। अब हिरण्यकश्यपु स्वर्ग में पहुंचता है।
हिरण्यकश्यपु की शक्ति के समक्ष हम सारे देवता कुछ नहीं कर सकते, मेरा वज्र भी नहीं।
घबराओ नहीं इंद्र, यदि तुम इस स्वर्ग को मुझे सौंपते हो तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अन्यथा।
नहीं नहीं, इसे स्वीकार कीजिए।
अपने सारे देवी देवताओं से पूछ लो, उन्हें तो मुझे अपना स्वामी बनाने में कोई आपत्ति नहीं ना। कह दो इन सब से कि आज से मैं इनका स्वामी हूँ, स्वामी।
मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपना सारा राज्य हिरण्यकश्यपु को सौंपता हूँ।
अति उत्तम, यहाँ पे उपस्थित देवी देवताओं, गंधर्व और मनुष्य, सभी ध्यान से सुन लो कि आज से मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ। मैं अपने नियम स्वयं बनाता हूँ, और इसलिए मेरा पहला नियम है कि विष्णु की उपासना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सारे होम हवन मुझे अर्पित होने चाहिए। आज से मैं भगवान हूँ। यदि किसी ने मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो मैं उसी क्षण उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इंद्र, जाओ मेरे लिए सोमरस ले आओ।
परंतु ये संभव नहीं, सोमरस तो केवल पुण्य आत्माओं के लिए होता है।
क्या कहा तुमने इंद्र?
नहीं नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य था कि इसका सेवन करने का अधिकार तो केवल आप ही को है।
जय हिरण्यकश्यपु।
नारद, स्वागत है आपका।
आह, मेरी पत्नी, और ये नन्ना बालक कौन है?
प्रिय हिरण्यकश्यपु, यह तुम्हारा पुत्र प्रहलाद है।
मेरा पुत्र? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिपाहियों, इन्हें सम्मानित करो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जय हिरण्यकश्यपु।
यहाँ आओ पुत्र, मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें वो सब प्रदान करूंगा जो सर्वोत्तम है। मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम अच्छा अभ्यास करो, ताकि जब तुम मेरे सिंहासन पर बैठो तो मुझसे भी अच्छा शासक बनो। और तुम अवश्य बनोगे, बस देखते जाओ। तुम्हें मैं धन, शक्ति, स्वर्ण और सारा ब्रह्मांड दे दूंगा, परंतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छा शिक्षक मिलना भी आवश्यक होता है। मेरे गुरु शुक्राचार्य के पुत्र अमरक और शंड से उत्तम और कौन हो सकता है? सिपाहियों, जाओ अमरक और शंड को बुला लाओ।
अमरक और शंड भक्त प्रहलाद को भौतिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि भक्त प्रहलाद को तो आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि से प्राप्त हुआ है, और वो इस ज्ञान का प्रचार अपने बाल मित्रों में करते हैं। ऐसा करते देख अमरक और शंड क्रोधित हो जाते हैं, और वे उन्हें उनके पिता हिरण्यकश्यपु के समक्ष ले जाते हैं। हिरण्यकश्यपु को जब ये पता चलता है कि उनका पुत्र विष्णु का उपासक है, तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हैं कि वे भक्त प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार दें। सिपाही ना ना प्रकार के प्रयास करने के उपरांत भी उन्हें मारने के लिए असफल हो जाते हैं। ऐसा होते देख हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हो गया है, और अब
हे दुष्ट प्रहलाद, हमने तुम्हें मारने का प्रयास कई बार किया है और तुम बार बार बच गए। बताओ मुझे, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम्हारा संरक्षण कर रही है? कौन है वो जिससे तुम्हें ये सब शक्ति प्रदान हो रही है? कौन है वो, बताओ?
पिताश्री, मुझे शक्ति देने वाला वही है जिसने आपको और संसार के प्रत्येक जीवों को शक्ति दी है, और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी असुरी बुद्धि को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को स्वामी स्वीकार करें।
क्या कहा? मैं कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार करूँ? मूर्ख बालक, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के उपरांत जब मैं तेरे उस कृष्ण को मारने निकला था, उस समय वो भी वैकुंठ छोड़कर भाग गया था। तू कहता है कि सारी शक्ति का स्रोत वो कृष्ण है, तो बता मुझे कहाँ है तेरा कृष्ण, बता।
भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है, वे प्रत्येक वस्तु में है।
क्या यहाँ है?
हाँ पिताश्री।
क्या यहाँ है?
हाँ पिताश्री।
क्या वो इस खंभे में है?
हाँ पिताश्री।
Oh, my God. हे हिरण्यकश्यपु, पहचान मुझे, मैं तेरा काल। तूने मेरे भक्त को बहुत ही कष्ट दिया। आज मैं तेरे समक्ष खड़े रहकर तेरे पापों का दंड देने वाला हूं। देख, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की मर्यादा को रखते हुए आज मैं तुझे दंड दे रहा हूं। ना तू घर के भीतर है, ना घर के बाहर, तू घर की चौखट पर है। देख, ना तू धरती पर है, ना आकाश में, तू मेरी गोद में है। तेरी मृत्यु ना दिन में हो रही है, ना रात्रि में, ये संध्या है। तेरी मृत्यु ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से हो रही है। तेरी मृत्यु मेरी नखाओं से हो रही है। मैं तुझे अपनी नखाओं से भृंग कर रहा हूं।